नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। उद्बोधन का नाम है प्रज्ञा योग की सुगम साधना।
जी,
हमारे पास पूज्य गुरुदेव के विचार हैं और हमारा उद्देश्य है कि इस साधना को, इसके सार को समझें, खासकर आज के समय में, है ना,
जब लगता है कि आस्थाएं थोड़ी डगमगा रही हैं।
हाँ, ये बात तो है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये आस्था संकट का समय है और इसका जो हल है वो प्रज्ञा अवतार से होगा। अब ये प्रज्ञा अवतार आखिर है क्या?
देखिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार आस्था की कमी उसके संकट के कारण ही मनुष्य के विचार, उसके कर्म, वो सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। प्रज्ञा मतलब सही गलत में भेद करने वाली बुद्धि, दूर तक देखने वाली समझ, विवेकशीलता। हाँ, यही इस संकट का समाधान है।
अच्छा,
और इसी विवेकशीलता का अवतरण, इसी का प्रकट होना ही प्रज्ञा अवतार, या जिसे गुरुदेव निष्कलंक अवतार भी कहते हैं, वो है
निष्कलंक अवतार।
हाँ, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि प्रज्ञा ही निष्कलंक है। बाकी हर चीज में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या कलंक हो सकता है, पर प्रज्ञा में नहीं। और यही महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री के रूप में अवतरित हो रही है, ऐसा उनका मानना है।
अच्छा, तो मतलब ये प्रज्ञा अवतार कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है?
नहीं नहीं व्यक्ति नहीं,
ये एक तरह का जागरण है, विवेक का, सही समझ का।
बिल्कुल, सही समझ का जागरण।
तो फिर पूज्य गुरुदेव ने इस प्रज्ञा को जगाने का, इस विवेक को साधने का जो तरीका बताया है, प्रज्ञा योग, वो असल में क्या है, उसे कैसे साधा जाए, काफी लोग जानना चाहेंगे।
हाँ, प्रज्ञा योग जो है वो कोई एक अकेली क्रिया या पूजा पाठ नहीं है। ये तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का मिला जुला अभ्यास है। एक तरह से कहें तो जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाता है। और इसकी शुरुआत बहुत सहज है। सुबह उठते ही बिस्तर पर ही बैठे बैठे बस ये सोचना कि आज एक नया जन्म मिला है, भगवान का दिया हुआ, इसे बेकार नहीं जाने देंगे, इसे सार्थक करेंगे ना, कि मानो आज जीवन का आखिरी दिन पूरा हुआ, अब ईश्वर की गोद में जा रहे हैं और दिन भर जो किया उसका एक लेखा जोखा, एक सिन्हावलोकन मन में कर लेना।
ये तो हुई ज्ञान वाली बात, मतलब रोज का आत्मचिंतन, सुबह प्लानिंग, रात को रिव्यू एक तरह से।
बिल्कुल।
इसके बाद फिर कर्मयोग का पहलू कैसे जुड़ता है इसमें?
कर्मयोग का जो पहला कदम गुरुदेव बताते हैं वो है शुद्धता।
शुद्धता शरीर की,
सिर्फ शरीर की नहीं, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, अपनी आजीविका, मतलब जो हम काम धंधा करते हैं उसकी शुद्धि, और अपने विचारों की भी शुद्धि।
विचारों की शुद्धि,
हाँ। इसके लिए रोज स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, पूजा की जगह को साफ रखना, ये सब तो है ही, साथ में कुछ और क्रियाएं भी है, जैसे पवित्रीकरण, आचमन, शिखा वंदन, प्राणायाम और न्यास।
न्यास, ये क्या होता है?
न्यास का मतलब है स्थापित करना या लगाना। यहाँ मतलब है अपनी इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, इनको अच्छे कामों में लगाना, ईश्वर के काम में लगाना, इन्हें गलत दिशा में भटकने से रोकना।
अच्छा, और पूजन के बारे में क्या? गुरुदेव तो ईश्वर को निराकार मानते हैं, तो फिर पूजन किसका और कैसे? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है।
हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, ईश्वर भले ही निराकार है, पर साधना की सहूलियत के लिए, मन को टिकाने के लिए साकार प्रतीक रूप में पूजा जाता है, जैसे गायत्री माता का चित्र या मूर्ति रख ली। और पूजा में खास तौर से पांच चीजें बताई हैं गुरुदेव ने, जल, अक्षत यानी चावल, धूप या अगरबत्ती की सुगंध, फूल और नैवेद्य यानी कुछ मीठा प्रसाद।
हाँ, ये तो सामान्य पूजन में होता ही है।
होता है, पर यहाँ गुरुदेव इसकी गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं ये पांचों चीजें भगवान को चढ़ाने के लिए उतनी नहीं है जितनी हमें कुछ सिखाने के लिए है।
सिखाने के लिए? ये बात तो वाकई बड़ी गहरी है। क्या सिखाती हैं चीजें?
देखिए, जल सिखाता है कि हमारा स्वभाव पानी की तरह शीतल और विनम्र हो, सबको शांति देने वाला। अक्षत यानी चावल, वो याद दिलाता है कि अपनी मेहनत की कमाई का एक अंश, जैसे ये साबुत चावल है, वैसे अपनी कमाई का एक अंश अच्छे कामों में, परमार्थ में जरूर लगाएं।
अच्छा, दान का महत्व।
हाँ, फिर धूप या अगरबत्ती की सुगंध, वो सिखाती है कि हमारा अपना जीवन, हमारा चरित्र ऐसा हो कि दूसरों को उसकी सुगंध मिले, प्रेरणा मिले, हम खुद जलकर भी दूसरों को प्रकाश और सुगंध दें।
वाह।
और फूल, फूल की तरह पहले खुद खिलें, प्रसन्न रहें और फिर भगवान के चरणों में चढ़ने को तैयार रहें, मतलब अपनी उपलब्धियों को विनम्रता से ईश्वर को समर्पित करने का भाव रखें, अहंकार न करें।
और नैवेद्य मीठा,
नैवेद्य की मिठास सिखाती है कि हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में मिठास हो, कड़वाहट न हो।
कमाल है, मतलब रोज जो पूजा करते हैं उसकी चीजों में ही जीवन जीने के इतने बड़े सूत्र छिपे हैं।
बिल्कुल, ये प्रतीकों से जीवन जीने की कला सिखाना ही प्रज्ञा योग का एक हिस्सा है।
पूजन के बाद फिर जप और ध्यान का क्रम आता है, है ना?
हाँ, पूजन के बाद गायत्री मंत्र का जप करने को कहा गया है, कम से कम 3 माला। और गुरुदेव ने इसका उद्देश्य भी बहुत साफ बताया है। पहली माला जपनी है अपने सुधार के लिए, अपनी गलतियों को देखने और ठीक करने के लिए।
ठीक है।
दूसरी माला अपनी आत्मा की शुद्धि और उन्नति के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए। और तीसरी माला वो समाज के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए। और ये जो प्रज्ञा अभियान है, मतलब सद्बुद्धि फैलाने का काम है, उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करनी है।
अपने लिए भी और सबके लिए भी, बहुत सुंदर। और इसके साथ ध्यान?
हाँ, जप के साथ उगते हुए सूर्य का, सुनहरे सूर्य का, यानी सविता देवता का ध्यान करना है।
सविता?
हाँ, सविता। ऐसी भावना करनी है कि वो जो सविता देवता का प्रकाश है, ज्ञान है, तेज है, ऊर्जा है, वो हमारे अंदर आ रही है, हमारे मन को, बुद्धि को, शरीर को, सबको तेजस्वी बना रही है, हमारी कमियों को जला रही है।
और सूर्य को जल चढ़ाने का जो विधान है वो भी शायद इसी से जुड़ा है।
बिल्कुल, जप ध्यान के बाद सूर्य को जल देना एक तरह से समर्पण का प्रतीक है। इसमें भाव ये रखना है कि हे प्रभु, जैसे ये सूर्य अपना प्रकाश सबको बिना भेदभाव के देता है, वैसे ही हम भी अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताएं, अपनी खुशियां, जो कुछ भी हमारे पास है, वो संसार की भलाई में लगाएंगे। ये जल हमारी भावना और सामर्थ्य का प्रतीक है जो हम संसार रूपी विराट भगवान को अर्पित कर रहे हैं।
अच्छा, तो ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, भक्ति हो गई, अब इसमें तप का भी अंग बताया गया है। तप का क्या मतलब है यहाँ? क्या जंगल में जाना है?
नहीं नहीं, जंगल में जाने वाला तप नहीं। तप का मतलब है खुद को तपाना, अनुशासन में रखना, जिससे अंदर की शुद्धि हो, मजबूती आए, इच्छा शक्ति बढ़े।
तो किस तरह का तप?
गुरुदेव ने 4 तरह के संयम या कहें तप बताए हैं। पहला, इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पर, खासकर स्वाद और वासना पर नियंत्रण रखना। दूसरा, अर्थ संयम, यानी पैसे का सही उपयोग करना, फिजूल खर्ची से बचना, सादगी से रहना, उसमें समय बर्बाद नहीं करना। और चौथा, विचार संयम, अपने विचारों पर ध्यान देना, फालतू के, नकारात्मक या गलत विचारों से अपने मन को बचाना, शुभ चिंतन करना।
ये तो रोजमर्रा के जीवन में करने वाले तप हैं।
बिल्कुल, और शुरुआत के लिए गुरुदेव ने हफ्ते में एक दिन, जैसे रविवार या गुरुवार को, कुछ विशेष अभ्यास करने को कहा है। जैसे अस्वाद व्रत रखना, उस दिन नमक या शक्कर छोड़ देना, थोड़ा वाणी संयम करना, कम बोलना, जरूरी हो उतना ही बोलना, या हो सके तो कुछ देर मौन रहना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी।
तो अगर हम संक्षेप में देखें, प्रज्ञा योग सिर्फ कोई पूजा या मंत्र जाप तक सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो सुबह शाम के आत्मचिंतन से शुरू होकर जीवन में हर स्तर पर शुद्धता लाना, पूजन के प्रतीकों से रोज जीवन के सबक सीखना, फिर जप और ध्यान से खुद की और समाज की उन्नति की प्रार्थना करना, और अंत में इंद्रियों पर, पैसे पर, समय पर और अपने विचारों पर संयम रखना। यहां तक फैला हुआ एक पूरा जीवन जीने का नजरिया है, एक पूरा पैकेज है।
एकदम सही कहा आपने, ये एक संपूर्ण साधना है। ये साधना व्यक्ति के अपने सुधार से, अपने परिष्कार से शुरू होती है, लेकिन इसका लक्ष्य सिर्फ अपना कल्याण नहीं, बल्कि पूरे समाज का, पूरी मानवता का कल्याण है। पूज्य गुरुदेव अक्सर कहते थे कि मनुष्य जो है वो सृष्टा का, ईश्वर का राजकुमार है, उसका प्रतिनिधि है, उसके अंदर खजाने भरे पड़े हैं, अनंत संभावनाएं हैं, जैसे धरती के अंदर रत्न छिपे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें खोजने की, तराशने की, साधना से, प्रज्ञायोग से।
तो सोचने वाली बात यह है।
हाँ, सोचने वाली बात यही है कि क्या हम बस एक सामान्य जीवन जीकर, खा पी कर, सोकर ही संतुष्ट हो जाएं, या फिर पूज्य गुरुदेव के दिखाए इस प्रज्ञायोग जैसे रास्ते पर चलकर अपने अंदर छिपी हुई उन देवतुल्य संभावनाओं को जगाएं, उस नर मानव से देव मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए।
बिल्कुल, एक बहुत गहरा विचार। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।